श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुना माई की, श्री गिरि गोवर्धन की, श्री द्वादश वन धामों की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस रविवार की संध्या में आप सबका स्वागत है। आप लोग में से कितने लोग श्री वृंदावन धाम को जानते हैं और कितने लोग श्री वृंदावन धाम में गए हैं? गुड। तो वृंदावन की ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को पता है। लेकिन विशेष बात यह है कि श्री वृंदावन धाम सर्वोच्च धाम है और श्री वृंदावन धाम में सभी धाम उपस्थित हैं और श्री वृंदावन धाम में जाने के बाद में और किसी धाम में जाने की जरूरत नहीं है। श्री वृंदावन धाम की विशेषता यह है कि बाकी जितने भी धाम है भगवान के, वो सभी धाम में भगवान भगवान होकर जाते हैं या भगवान होकर आते हैं, लेकिन श्री वृंदावन धाम में भगवान अपनी भगवान का पद जो है उसको छोड़ के आते हैं। मैं भगवान हूं या श्री कृष्ण भगवान है, ये ज्ञान जो उनके भक्तों के पास होता है, केवल ज्ञान नहीं साक्षात्कार होता है, उसका अनुभूति होती है उसकी, वो साक्षात्कार और अनुभूति भक्तों के हृदय से वो चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं उसको, वो साक्षात्कार हीन उनके भक्तों को बनाते हैं और फिर वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं। जरूरी होता है ना, जो कोई बड़ा क्रिकेटर हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई बड़ा फिल्म स्टार हो, वो ऐसे उसको लगा कि दिवा कैफे में आके थोड़ा सा पिज्ज़ा खा ले तो खा सकता है क्या? वो नहीं खा सकता, उसके पीछे इतना भीड़ लगी रहेगी, उसको कुछ भी नहीं करने को मिलेगा जो हम लोग सामान्य आदमी आराम से कर सकते। एक पेन खरीदना है उसको पार्कर का किसी स्टॉल में जाके, तो खरीद सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। सब जानते हैं उसको कि इतना महान व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता वो। तो वैसे ही भगवान जब भगवान बनकर आते हैं तो सब उनके पीछे एंटराज पार्षद रहता है उनका, उनके रहते हैं, तो उनको अगर लगेगा कि चलो भाई इनके घर पर जाके माखन चुरा लें, तो नहीं चुरा सकते वो। हाँ, किसी के साथ गुल्ली डंडा खेले, हाँ गोटी खेले उनके साथ में, ऐसा लगेगा तो उनको स्कोप ही नहीं उसके अंदर। लेकिन उनको लगता है कि गोटी खेली जाए, गुल्ली डंडा भी खेला जाए, माखन भी चोरी किया जाए, हाँ, गोबर और गोमूत्र के मिक्सचर में स्केटिंग करे पेट के आधार पर, पेट के बल पर वो जो चिकना बहुत मिश्रण है गोमूत्र गोबर का, उसमें पेट के बल कर घूमे, पेट के बल पर, ये आनंद वो विष्णु बनकर नहीं कर सकते हैं, ले सकते हैं। या आपको अगर लगेगा कि आओ चलो गोटी खेलें, ऐसे गले में हाथ डालकर आप नहीं कर सकते उनके साथ में, वो दूर से ही ओम नमो नारायणाय। ऐसे एक बार ग्वाल वालों को ऐसा जिद किया उन्होंने अपने दोस्त कृष्ण के साथ कि हमने सुना है आप वैकुंठाधिपति हो, आप वैकुंठ में रहते हो, हमको वैकुंठ का दर्शन कराओ। क्योंकि हुआ ये था कि जब कृष्ण भगवान के माता पिता को वरुण देव ने अरेस्ट कर लिया था गलत समय पर स्नान करने के लिए, एकादशी के पारण के समय, तो वे अरेस्ट कर लिया तो कृष्ण भगवान उनको छुड़ाने गए, तो बहुत लंबी कहानी है वो। लेकिन जब वापस आ रहे थे, पहले कृष्ण पहुंचे, तुरंत वरुण देव ने उनको रिहा कर दिया माता पिता को, पिता को खाली, और फिर कृष्ण भगवान का पूजन किया। उसके बाद नंद बाबा का भी पूजन किया, नंद बाबा भी हैरान हो गया, अभी तो भी अरेस्ट किया था, अभी पिता पूजन किया जा रहा है। तो फिर वहां से फिर सब गिफ्ट विफ्ट लेके सत्कार होके सब कुछ करके निकले, तो ऑन द वे भगवान ने क्या किया, अपने बाबा को वैकुंठ के दर्शन कराए, लौट के आए। वो जब लौट के आए तो एक विशेष बात हुई, वो पानी के अंदर से लौट के आ रहे थे लेकिन दोनों के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। सब लोगों ने नोट किया कि अरे ये तो पानी के नीचे से लेके आए लेकिन दोनों के कपड़े एकदम क्रिस्प सूखे हैं। फिर नंद बाबा आते ही उन्होंने उनको बोलने लगे कि अरे लाला ने मुझे वैकुंठ के दर्शन कराए। तो सब लोग झगड़ा करने लगे, हमने क्या पाप किया है, हमने क्या ऐसा गलत किया जो हमको नहीं दिखा सकते। तो कन्हैया कहते हैं कि वैकुंठ में कुछ नहीं भैया, आपके लिए वहां पर बोर हो जाएगा बहुत। नहीं नहीं नहीं, आपने बाबा को दिखाया तो हमको भी दिखाना पड़ेगा। अभी क्या है, दोस्तों की जिद है, तो कहते हैं आँख बंद करो। तो आँख बंद कर दिया, आँख खोलो, ऐसा आवाज आया। तो जब आँख खोला ना, सब वैकुंठ में, सब ग्वाल बाल वैकुंठ में। इतना बड़ा वातावरण वैकुंठ का, ना ऐश्वर्य, चकाचौन, सब चमचम चमचम, सब रत्नों से भरे हुए आसन, रत्नों से, चिंतामणियों से भरे हुए, क्या कहते हैं, भूमि, हर एक कर्ण चिंतामणि से बना हुआ है। और बहुत सारी जनता है, सब लोग ऐसे चतुर्भुज, चार भुजा वाली, और वो भी हमारे भी जो यहाँ से वहाँ बैठे हुए हैं वो भी चतुर्भुज, और बिल्कुल हमारे पास में थे अभी बात करते समय। लेकिन वैकुंठ पहुँचने के बाद बहुत दूर एक ऊंचे आसन पर वही राधा रानी बिल्कुल ऐश्वर्य संपन्न होकर उनके बाजू में लक्ष्मी बनकर बैठी हुई है, वही कन्हैया चार भुजा वाले बनकर ऐसे पूरे ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए हैं, और ये लोग कहीं कोने में खड़े होकर देख रहे हैं। और उनको दिल कर रहा है कि अरे उनसे बात करना है हमको जाके, तो इतना सारा ऑफिशियल माहौल है ना वहाँ पर, कैसे कोई जा नहीं सकता है, हाय हाउ आर यू, ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। और इनको तो वो रोज की आदत है, तो एकदम वो घुटन सी होने लगी उनको। तो बहुत जिद किया उन्होंने, ये हमको मिलना है, वो हमारा दोस्त है। मैं क्या बात कर रहे हो, गांव के लोग तुम लोग बोल रहे हो उसको दोस्त, तो हमारे वैकुंठाधिपति विष्णुदेव हैं वो। तो बहुत उनको ना ऐसे अस्वस्थ हो गए वो, यू नो हाउ पीपल, सिंपल पीपल फील वेरी ऑकवर्ड इन द ऑफिशियल एटमोसफियर, वो अस्वस्थ हो गए बहुत। और उन्हीं को बोलने लगे वो पहरेदारों को, अरे तुम्हारे धाम का जो देवता है उसको मिल ही नहीं सकते, उसे हमारा धाम अच्छा है, हमारी धाम के देवता को कभी चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कंधे पे चढ़ सकते हैं उसके, वो हमारे धाम का देवता अच्छा है तुम्हारे धाम से, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा धाम। ऐसे बोल रहे हैं तो उनको आवाज सुनाई पड़ी, आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया, फिर आवाज आई आंख खोलो, तो आंख खोल दिया, तो वापस वृंदावन में। और वो जो दूर थे चार भुजा वाले, एकदम बाजू में दो भुजा वाले बनकर खड़े। मैंने कहा था ना आपको बोर हो जाएगा, हमने जिद किया, बोला अभी कभी वैकुंठ नहीं जाएंगे, क्या है वैकुंठ में। अच्छा सोच सकते हैं कि सब लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं, वहां पर निवास करना चाहते विष्णु के साथ, और ये लोग उसको पसंद ही नहीं करते। कैसा उनका भाव होगा, और ऐसे उनके भक्त है ये, वो चाहते नहीं कि ये समझे कि हमारे कृष्ण जो है वैकुंठनाथ है। ठीक है होंगे तो अच्छा है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं, हमें वही पसंद है जो हमारे साथ में गोली खेलता है, गेंद खेलता है, जमुना में कूदता है, पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ के शाखाओं पे चलता है, कभी कूदता है, कभी उतरता है, कभी चढ़ता है, तो पेड़ की शाखा से जमुना में छलांग लगाता है, कभी जमुना से पेड़ के शाखा में चला जाता है। वो बढ़िया ठाकुर है हमारा। और भगवान को भी उनके जो ब्रजवासी भक्त है ना, जो उनको जानते नहीं कि भगवान है, उनको छोड़कर नहीं रहना चाहते, इसलिए वो सब साक्षात्कारी जीव हैं, वो सब परम सिद्ध परम ज्ञानी परम साक्षात्कारी जीव हैं, लेकिन वो उनका जो साक्षात्कार है कि ये भगवान है, वो भगवान ने डिलीट कर दिया है और बाकी सब प्रेम रखा है उनका, और उस प्रेम का अनुभव करने के लिए भगवान वृंदावन में आते हैं। वो उन्होंने कई बार कहा है कि वैकुंठों के, एक वैकुंठ नहीं, अनंत वैकुंठों के अनंत ऐश्वर्यों को छोड़कर मैं इन लोगों का छाछ छुड़ाने के लिए आया हूं, इतना मुझे इनका प्रेम प्रिय है। तो वृंदावन धाम जो है, भगवान ने कई बार ब्रजवासियों को, ब्रजवासी मतलब जो वृंदावन में रहते हैं, वहां पर जन्म उनका हुआ है, भगवान के परम भक्त हैं, माधुर्य भक्त हैं, तो कई बार उनको ऐसे होता ना, कभी कभी एक अर्ज निकलता है, सब वेग उत्पन्न होता है, चलो अभी गंगा जी में स्नान करके। तो ऐसे एक कथा है कि वैसे नंद बाबा किसी कथाकार के सामने बैठे हैं, बहुत सारे ब्रजवासी सब ब्रजमंडल के लोग बैठे हुए हैं, और वो कथाकार गंगा की महिमा बता रहे हैं। अभी मैं हर एक कथा में विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गंगा जी की महिमा सुनते ही ना, इससे नंद बाबा वहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसे सभी जो मैं बता रहा हूँ आप खड़े हो गए, सब अभी जाना है गंगा जी के पास। तो खड़े हो गए, बोले बाबा क्या हो गया? बोले अब भी गंगा जी जाना है, अगर एक सांप की पूंछ के गंगा जल को स्पर्श होते हुए वो वैकुंठ जा सकते हैं, तो हमको तो कम से कम जाके स्नान करना ही चाहिए उधर। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा क्यों जा रहे हैं आप, मत जाओ, क्यों जा रहे ब्रज छोड़ के? नहीं, तू तू तो बालक है, तुझे क्या समझ में आता है? तो उन्हें कहा कि एक काम करो, जाने के पहले मेरे साथ कुछ समय चलो आप, मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ। तो ये सब गोवर्धन के आसपास हो रहा था, तो उनको सब लोगों को लेके भगवान कृष्ण जो है वो उनको गोवर्धन के बीच में लेके जाते, और सब छोटे से बालक आगे सबसे, सारे ब्रजवासी पीछे, और वो ऐसे ध्यान करते हैं, भगवान जैसे दिखाते हैं कि ध्यान कर रहा हूँ, और जैसे ध्यान कर रहे हैं ना, उन सब देखते हैं, सब देख रहे हैं, उनके हृदय से श्री गंगा देवी प्रकट होती है, सबके आंखों के सामने वो प्रकट होकर ऐसे उनसे सम्मुख होकर खड़े हो जाते। चार वो भुजाएं हैं, हाँ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ पर बैठी हुई है, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में माला, और कहती है भगवान क्या आदेश है मेरे लिए। सब लोग दंग हो जाते हैं, अरे तो गंगा देवी को पहचानते हैं, वो इतना तो ज्ञान है उनको, बोले गंगा देवी हमारे लाला को प्रणाम कर रही है और पूछ रही है क्या आज्ञा है मेरे लिए। वाह, हमारे लाला तो बहुत बड़े आदमी है। तो कन्हैया भी बड़े रोब से कहते हैं, आपका जल यहाँ पर प्रस्तुत करो, हमारे ब्रजवासी हमारे बाबा स्नान करेंगे। तो अहो आश्चर्य, उनके आश्चर्य में और बढ़त वृद्धि करने के लिए गंगा जी स्वयं सबके सामने अपना जल प्रकट कर देती है, पूरा जल ऐसे पैदा हो जाता है और एक विशाल सागर जैसा, समुद्र जैसा एक कुंड बनता है, उसका नाम क्या पड़ता है? मानसी गंगा, जो भगवान के मन से हृदय से प्रकट हुई और सबके सामने प्रकट हुई, ऐसा नहीं कि उनको कहना पड़ रहा है कि यहां से प्रकट हुई, सब देख रहे हैं उसको। तब तुरंत जाके सब लोग ने स्नान किया, बोला बाबा स्नान करो आप, सब ने स्नान किया, तो कहते कहीं ब्रज के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि जमुना जी का ऐसा भाग्य था कि भगवान ने जन्म लेते ही वसुदेव को क्या बोला, मुझे ले जाओ गोकुल। तो रास्ता कहाँ था? जमुना जी के, जमुना जी ऐसे बह रही थी बहुत जोरदार आनंद से, बाढ़ जैसे आ रही थी, तो वो उतरे तो डूबने लगे उसके अंदर। तो एक जगह लिखा है कि वो उन्होंने तुरंत पावर पैर बाहर निकाले और पैरों को स्पर्श हुआ जमुना जी का, जमुना जी को इच्छा थी कि भगवान के चरण स्पर्श करें और मैं स्वयं भगवान का चरणामृत जल बन जाऊं। और एक जगह लिखा है कि भगवान ने छलांग लगाया टोकरे से कूद कर और वो डूबने लगे और वासुदेव चिल्लाने लगे, कोई लो मेरे लाला को लो, कोई लो कोई लो। तो जिस जगह चिल्लाया तो उसका नाम पड़ा कोई लो घाट। जैसे ही वो भगवान, इससे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इधर उधर जैसे ही गिर गए, उनका स्नान हो गया ना, पूर्ण चरणामृत जल हो गया जमुना जी, और फिर रास्ता दिया उसने, फिर उसने तुरंत भगवान को पकड़ा और वापस रखे, फिर पार हो गए वो। तो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि जन्म होते ही तुरंत जमुनाज पर ऐसा कृपा किया और उसके बाद में अनंत बार जमुनाज में छलांग लगाया, कभी स्नान कर रहे हैं, कभी क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी गेंद खोजने जा रहे हैं, कभी पेड़ से कूद रहे हैं, कभी हाथ धो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, इतना कृपा दिया। तो गंगा जी ने कहा था कि, गंगा जी जमुना जी की बड़ी बहन है ना, तो जमुना जी को कहा, अरे तुमको इतना भाग्य मिल रहा है, मेरा भी थोड़ा सिफारिश करो, मुझे भी कुछ थोड़ा भाग्य मिले वृंदावन का लीला में। तो फिर उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला रचाया और गंगा जी को वृंदावन में स्थान दिया और फिर उसके अंदर नौका विहार किया भगवान ने। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि सारे धाम भगवान ने इस ना उस बहाने वृंदावन में प्रकट किए। ऐसे ही भगवान जब 7 साल के हो गए ना, तो नंद बाबा ने कहा कि हम सब लोग बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, गंगोत्री जमुनोत्री जाएंगे। बोले फिर वही बात, अभी जमुना गांव मानसी गंगा को प्रकट किया ना मैंने, इधर बंद करो उसको। तो वो नहीं नहीं आप जानते ना, बालक हो, हमने मन्नत मांगी थी, आप मन्नत मांगी थी कि जब आप होंगे तब हम चार धाम की यात्रा करेंगे। आप तो अभी आप हो गए हो, 7 साल के भी हो गए, तो जाना ही चाहिए, ओल्ड ही हो गया ये। तो फिर कहा उन्हें आंख बंद करो, क्योंकि सब लोगों को तो इच्छा है ना कि मन्नत किया भगवान से जाना चाहिए, अपना इतना कृतज्ञता के व्यक्त करना चाहिए। तो उन्हें कहा आंख बंद करो, तो आंख बंद किया, बोला आंख खोलो। आंख खोलने के बाद क्या देखते हैं, हिमालय के बीच में खड़े हैं, चारों ओर हिमालय, नर नारायण पर्वत, इधर से यमुनोत्री, इधर से गंगोत्री, इधर से हर की पैड़ी, हरिद्वार, एक साथ सब दिख रहा है। जैसे अभी अपना समझो आप हिमालय में गए, आप तो आपके पास कैमरा है समझो, तो आपको सारा सीन जो आपको दिख रहे हो कैप्चर करना था, आपको एक सीन में कितना भी वाइड एंगल लेंस लेंगे ना तो नहीं पिकअप हो सकता, आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इधर से उधर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कुछ बहुत सारा कंग्लोमरेट करना पड़ेगा उसको। तो ये ऐसा नहीं है, ये सारा चीज है ना ऐसा एकदम वाइडेस्ट पॉसिबल लेंस में कैसे हो सकता है, सामने सब कुछ जो है, जो नीचे जमीन के लेवल पे हरिद्वार, हर की पैड़ी है वो भी दिखाई पड़ रहा है, और सबसे ऊंचाई पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री वो भी दिखाई पड़ रहा है, सारा जल प्रवाह दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तुरंत सब लोग अपने कपड़े उतार के आ गए, इधर गए गंगोत्री में स्नान करके आए, इधर गए जमुनोत्री में स्नान करके आए, इधर केदारनाथ, इधर बद्रीनाथ। अच्छा है ना, बहुत वहां से कितना टाइम लगता है बद्रीनाथ से केदारनाथ और नीचे से ऊपर? हाँ, 24 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है, पूरा उल्टी कर करके सब सबके प्योरीफाई हो जाता है पूरा, अंदर से बाहर कंप्लीट एकदम। उधर भगवान ने उसी डिफिकल्ट धाम को, और डिफिकल्टी क्या होती है वहां पर, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ऑक्सीजन प्रेशर बहुत कम होता है, जिनको अस्थमा का बीमारी हो तो सांस फूल फूल के परेशान हो जाते हैं, ऊपर से ठंड इतनी है, -डिग्री हो जाते हैं, बर्फ गिरती है। आप जाएंगे रात को तो ठीक था, सुबह उठेंगे तो 8 फुट की बर्फ, कितना कष्ट है उधर जाने के लिए। ये प्रकट जो किया ना उसके एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत प्रसन्न वातावरण है, कोई गर्मी नहीं हो रही लेकिन प्रसन्न वातावरण है, और चारों धाम एक ही जगह पर। ऐसे चल के यहाँ वहाँ जाके 2 घंटे में चारों धाम कर सकते सब लोग उज्वासी गए, नंद बाबा सब लोग ने स्नान किया, और फिर जब स्नान हुआ तो वो धाम वही रहा। और भी एक उसकी विशेषता ऐसी कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ जो प्रकट किया ना, वो आप 10 मिनट के अंदर उसके चोटी पर पहुंच सकते हो और केदारनाथ लिंग का दर्शन कर सकते हो। 10 मिनट मैक्सिमम, पूरा नंदी बना हुआ है ऐसे पत्थर में, तो उसके चार पैर के बीच में वो केदारनाथ लिंग है शिव जी का, वो भी दर्शन कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते चोटी पर। अभी लेकिन गंगोत्री जमुनोत्री सब अभी सूख गया है, उधर दर्शन नहीं होता, लेकिन वो दर्शन हुआ करता था कुछ 40-50 साल पहले भी। अभी उसके वो क्रूज है, क्रूज वहां पर वो निशान है कि यहाँ गंगोत्री, यहाँ जमुनोत्री, यहाँ हर की पैड़ी, सब कुछ है दर्शन। फिर उसके बाद में भगवान जब द्वारका से लौट के आए ना, अभी क्रोनोलॉजी में भी नॉट ऑर्डर इन ऑर्डर बट डजेंट मैटर, श्रीमद् भागवत भी क्रोनोलॉजी में नहीं है बाय द वे। तो भगवान जब ही सब महाभारत का युद्ध समाप्त करके अपने अपने वंश को पधारने के पहले दंतवक्र को मारने के लिए बहाने मथुरा में आए थे, शिशुपाल का वो काउंटर पार्ट था दूसरा, तो दंतवक्र का वध किया भगवान ने और फिर वो उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। उस समय ब्रजवासी लोग एकदम ऐसे पीक में थे विरह के, कभी भी गुजर सकते हैं, इतना उनका विरह भगवान से हुआ था। तो राइट टाइम पे भगवान आए और उनको भगवान ने गोलोक वृंदावन लेके गए। वो उसके पहले वो गोपियों से वार्तालाप कर रहे थे, तो गोपियाँ उनको पूछते कि हमने ऐसा सुना था कि आप हमारी याद में रोते थे द्वारका में, और आपके अश्रुओं से वहां पर गोमती नदी बनी हुई है। आप सोच सकते हैं, यहां पर भी नंद बाबा और यशोदा माई के रोने से दो नदियां बहती थी नंदगांव के ऊपर से नीचे। जब उद्धव जी गए थे तो पूछते थे कि नंद बाबा कहाँ रहते हैं, तो किसी रोते हुए ब्रजवासी विरह में थे, उन्होंने कहा कि ये दो नदियां हैं ना, इसके किनारे किनारे चढ़ के जाओ, आप नंद बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो उनको भी समझा नहीं क्या बोल रहे हो, लेकिन जब किनारे किनारे ऊपर चले गए तो दिखाई पड़ा कि दोनों बैठ के रो रहे हैं, दोनों के आंखों से अश्रु बह के वो नदी बनकर बह रहे उधर। तब ऐसे ही वो आपने हमने सुना है कि आप रोते थे और नदी बनी हुई है, और हमने सुना है कि द्वारका में बहुत बड़ा समुद्र भी है। वृंदावन धाम में समुद्र नहीं ना, जमुना जी है, समुद्र जैसा विशाल कुंड है, लेकिन समुद्र एक अलग चीज होती है, इसमें लहरें निकलती है, बहुत आनंद आता है। तो कहते हमें दिखाओ ना, वो दर्शन कराओ। तो भगवान ने वहां पर गोमती प्रकट की और समुद्र प्रकट किया, जो आज भी गोमती कुंड और समुद्र रत्नाकर के रूप में वहां पर प्रसिद्ध है, रत्नाकर कुंड और गोमती कुंड। तो इस बहाने भगवान ने कोशी में द्वारका को प्रकट किया। आज भी कोशी जो नंद बाबा का कोश था वो ब्रज में प्रकट हुई द्वारका है। फिर भगवान ने जब राधा कुंड श्याम कुंड बनाया है ना, अरिष्टासुर नाम का बैल वहां पर आया था और भगवान ने उससे युद्ध किया, बहुत घनघोर युद्ध किया। इतना भयंकर था वो अरिष्टासुर कि उसके पूंछ जो थी ना वो ऐसे बादलों के यहां वहां कर रही थी, तितर बितर कर रही थी। उसकी सांस जो थी वो तूफान, क्या कहते हैं उसको, हरिकेन ऐसा तूफान पैदा कर रही थी। उसकी सांस अंदर बाहर चल रही थी। उसके पैर जब जो जमीन पर डाल रहे थे, एक 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 पैर चार में से एक एक ऐसे, तो वो जमीन के अंदर के जल के स्रोत को ऐसे फवारे की तरह पैदा कर रहे थे। यू नो हाउ टू डू बोरिंग, यू नो, फॉर बोरवेल। उसके पैर से वो जल के स्तर तक उसका पैर पहुंच के वैसे स्प्रिंग्स आते थे पानी के, ऐसे पैदा हो गए उसके। और भूकंप अलग, हर समय पर हर पैर के साथ भूकंप, और इतना मल मूत्र उसने छोड़ा कि मल के पर्वत और मूत्रों की नदियां पैदा हो गई। इतना भयंकर आतंक एक साथ पैदा किया उसने। तो भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और उसको सहजता से मार दिया। तो उसके एक पैर का जो निशान था जिसमें गड्ढा बन गया था, उसमें भगवान ने सभी 68,000 तीर्थों को वहां पर निवास दिया। जल के साथ पर्वत, नदियां, कुंड, क्षेत्र, जमीन, सब वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। जो व्यक्ति रूप धाम थे वो सब वहां प्रकट होकर उन्होंने उस कुंड में प्रवेश किया, जिसका नाम पड़ा श्याम कुंड। और फिर वही सारे कुंड, वही सारे तीर्थ, नदियां, जलाशय, सरोवर, पर्वत, वो सब राधा कुंड में भी प्रवेश किया। इसका मतलब एक ही जगह पर दो कुंड हैं, जो गोवर्धन की दो आंखें मानी गई है। वो दोनों आंखें जो है वो जितने सारे तीर्थ हैं वो सब उसमें विराजमान। इसका प्रूफ क्या है कि राधा कुंड का जब प्रकट दिन आता है ना, प्राकट्य दिन कभी आता है, वो कार्तिक महीने के अष्टमी को आता है, बहुलाष्टमी के दिन। शरद पूर्णिमा के बाद में जो अष्टमी आती है ना, उसमें वो राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था, जिस दिन भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, बीच रात में 12 बजे, और तब जाकर 12 बजे राधा कुंड श्याम कुंड का भी प्रकट हुआ था। उस दिन आज भी दूध की धार निकलती है पानी में राधा कुंड की। उसका जो लॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि जो क्षीर सागर है ना, जहां पर शिरोधक शाही विष्णु विराजमान रहते हैं, वो क्षीर सागर धाम भी वहां पर प्रकट प्रवेश किया था उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड में। तो जब राधा कुंड प्रकट दिन आता है, प्रकट समय आता है 12 बजे, तो वो दूध की धार निकलती है पानी में से, और उसको देखकर सब लोग सहस्त्र छलांग लगाते हैं उसके अंदर स्नान करने के लिए 12 बजे। और जब राधा, अभी आप सोचेंगे कि ये सब तो अभी कहानियां हैं बच्चों को बहलाने के लिए, अच्छी कहानी है, लेकिन जब राधा कुंड और श्याम कुंड का वो हुआ ना, क्या है, जीर्णोद्धार हुआ ना, तो बहुत सारा टनों में कीचड़ निकाला गया, और जब वो कीचड़ निकाला गया तो उसमें अनंत स्रोत निकले, इतने बड़े फव्वारे इतने आकाश में उड़ रहे हैं, कितने कितने मीटर तक, कि उनको वो जीर्णोद्धार का काम करना भी मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कई स्रोतों के ऊपर सीमेंट के बैग्स रखे, वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इतना जल उछल रहा था वहां से। तो वो सब जल कहाँ से आ रहा है, जो सारे धाम वहां पर प्रवेश किए थे जल के स्वरूप में, वो सब नीचे कीचड़ के नीचे दबे हुए थे, उसको जब फ्री कर दिया तो सारे प्रकट हो गए वो। तो उसमें से कुछ स्रोत खुले रखे ताकि वो जल उसमें बना रहे, जो जल आपको दिख रहा है, अनंत जलों का स्रोत है नीचे। हर एक जो भगवान ने प्रकट किया उसके अंदर वो सब जलों के स्रोत हैं। तो ये हुआ राधा कुंड श्याम कुंड। फिर एक ऐसी लीला है कि भगवान रूपंजरी मेक द एसी लिटिल स्ट्रॉन्गर इट्स लिटिल हॉट। सो भगवान एक बार खेल खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। अच्छी कहानी बहुत है। और अभी जो पाकिस्तान में एक देश है सिंध, सिंध प्रांत है ना, सिंध सिंध कहते हैं ना हम लोग, तो वो सिंधु नरेश जिनका नाम था बिमल, राजा बिमल, वो वहाँ पर एक बार दुखी होकर बैठे थे। तब नारद मुनि आए या वशिष्ठ मुनि आए, उन्होंने कहा गुरु महाराज सब कुछ अच्छा है लेकिन संतान नहीं है, दुखी हैं बहुत बहुत। तो वो ध्यान में बैठते हैं, देखते हैं कि इसके भविष्य में क्या है, देखते हैं कोई पुत्र नहीं है भविष्य में, तो वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, कन्याएं जरूर हैं आपके लिए। अच्छा तो कितनी कन्याएं हैं? तो 3 करोड़ कन्या हो गया आपको, 3 करोड़ कन्या। तो अभी कन्या होते ही क्या टेंशन आता है बताओ आप? सबसे पहला टेंशन होता है कि शादी भी करना है इनको बड़े होने के बाद में, अभी नहीं तो बाद में करना है। तो 3 करोड़ कन्याओं को 3 करोड़ वर भी ढूंढने पड़ेंगे, तो वो एक चिंता होने लगती है। तो लेकिन उस समय वशिष्ठ मुनि बताते हैं डोंट वरी, परम भगवान गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान इनके साथ विवाह करेंगे। और उनका वर्णन करते हैं कि वो आगे जाकर आएंगे, वो 4 भुजा वाले होंगे, नीले रंग के होंगे, पीतांबर धारण करने वाले होंगे, मोर मुकुट धारण करने वाले होंगे। तो बहुत सारा वर्णन करते हैं उनका, कौस्तुभ मणि वैजयंती माला। तो वो उनके साथ में उनका वर होगा, वरण होगा और विवाह होगा। तो यथावकाश वो अपने दूत को भेजते हैं मथुरा। तो दूत जाता है वृंदावन में, सब घूम के आता है, एक जगह उनको बच्चे खेलते हुए मिलते हैं और देखते हैं कि एक नीला बालक है, इसके अंदर एक गोरा बालक है। और नीला बालक के साथ सारा वर्णन मिलता जुलता है एक्सेप्ट फॉर 4 भुजा के बदले में 2 भुजा, बाकी सारा कंप्लीट मैचिंग है। तो वो थोड़ा सा दुख खुश होता है लेकिन थोड़ा दुखी होकर लौटता है कि महाराज ये चीज मैच नहीं हुई। उस समय भीष्मदेव वहां पर अपने यौवन में दिग्विजय करने के लिए आए थे, और विमल राजा तो कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं, उनके मित्र थे, भक्त थे, दोनों वैष्णव हैं। तो वैसे ही जब अश्व आया उनका दिग्विजय का, तो इन्होंने केवल प्रेम से उनको खिलाया और भोजन किया। तो भोजन के समय भीष्मदेव को पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुदेव ने कहा था कि मेरे 3 करोड़ कन्याओं के लिए जो वर है वो इस वर्णन में है, लेकिन हमको वो लड़का मिला लेकिन वो 2 भुजा वाला है। तो भीष्मदेव तो परम वैष्णव है ना, महाजन है। तो भीष्मदेव बताते हैं कि मुझे ये राज पता है, ये रहस्य की बात है, इसके बारे में कोई वाच्यता नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि कंस का सबको भय है। ये जो 4 भुजा वाले भगवान मथुरा में प्रकट हुए थे वो देवकी के बिनती के कारण 2 भुजा में हो गए और बालक बनकर फिर गोकुल में गए, गोकुल से अभी वृंदावन में खेल रहे हैं। तो वही है वो, डोंट वरी, जिसकी आप खोज में हो उस वही है। तो वे दोबारा वो सिंध से भीष्म से प्रेरित होकर दूत को भेजते हैं। और फिर दूसरी बार जब आता है दूत तो भगवान वहां खेल रहे हैं, भगवान उस दूत को देखते हैं, दूत भगवान को देखते हैं, और दोनों में इशारे होते हैं, वो समझ जाता है कि हमको जाना है। तो भगवान अपना एक रूप वहीं बालकों के साथ छोड़ देते हैं और दूसरे रूप में वहां से निकलते हैं और हवाई मार्ग से दोनों सिंध प्रांत में पहुंच जाते हैं, हवाई मार्ग से उड़ते हुए। और जहां पर उस समय विमल राजा करोड़ों यज्ञ कर रहे थे, करोड़ों यज्ञ कुंड में बैठकर सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर, बहुत भव्य योजना थी। तो जब भगवान ऐसे हवा से ऐसे आए तो विमल राजा ऐसे खड़े हो गए और वहीं पर उन्होंने प्रणाम किया उनकी रानी ने उसमें, और तुरंत अपनी सज सज के तैयार रखी हुई 3 करोड़ कन्याओं को लेकर आए। और उसी यज्ञ कुंडों के पूरे यज्ञ कुंड के स्थली में, यज्ञ स्थली में 3 करोड़ कन्याओं के साथ में श्री कृष्ण भगवान का विवाह किया गया। कैसे किया होगा? वेरी सिंपल, भगवान 3 करोड़ रूप में विभाजित हो गए। जो हमारे लिए सोचने के लिए भी नामुमकिन है, उनके लिए बहुत सहज है। उन्होंने अपने 3 करोड़ रूप प्रकट किए और हर एक कन्या को वरमाला पहनाई और यज्ञ की परिक्रमा की, अग्नि की परिक्रमा की, सबके आशीर्वाद लिए और फिर वो विवाह करके दहेज लेकर भेंट वस्तु लेकर फिर वो तीनों करोड़ों कन्याओं को लेकर आकाश मार्ग से काम्यवन में गए। आपको पता है काम्यवन कहाँ है? कितने लोगों को पता है? काम्यवन ब्रज के उत्तर दिशा में, और काम्यवन राजस्थान में आता है टेक्निकली आज की तारीख में। नंदगांव के आगे जाएंगे तो 15 किलोमीटर आप उत्तर दिशा में जाएंगे दिल्ली की ओर तो काम्यवन आएगा। तो काम्यवन वृंदावन धाम जो 12 वनों से बना है उसमें से एक वृंदावन है। एक तो ऐसे कहते हैं हम लोग कि वृंदावन धाम मतलब पूरा ब्रज मंडल को भी वृंदावन धाम कहा गया है, लेकिन उसमें और एक टेक्निकली एक वृंदावन नाम का एक वन भी है जो बहुत भगवान को प्रिय है। और ऐसे और 11 वन है जो भगवान को बहुत प्रिय है, उसको द्वादश वन कहते हैं। तो नंबर 1 का प्रिय भगवान का वृंदावन है, नंबर 2 का प्रिय वन काम्यवन है। और काम्यवन में ऐसे कहते हैं काम बन जाए तो काम बन जाए, कुछ समझ में आया? काम बन जाए तो काम बन जाए मतलब अगर आप काम्यवन जाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। काम का मतलब और एक अर्थ उसका है कि इच्छाएं, और काम वन यानी काम काम्यवन, तो काम बन जाए तो सब काम बन जाए, ऐसे काम्यवन का महात्म्य है। और उसमें भगवान ने बाल लीला और माधुर्य लीला श्रृंगार लीला बहुत प्रधानता से की है। तो भगवान उनको वहां लेकर गए और एक अच्छी जगह खुली जगह देखकर भगवान ने तीनों करोड़ कन्याओं के साथ अपनी पत्नियों के साथ में रास नृत्य किया। अभी एक जगह पर वो अभी भी खेल रहे हैं गोकुल नंद वृंदावन के नंदगांव के इलाके में, क्योंकि वृंदावन जो पौराणिक वृंदावन है उसके अंदर नंदगांव बरसाना जावट आज का वृंदावन गोवर्धन और जमुना ये सब कुछ उसमें मिला हुआ है, ये सब मिलकर वृंदावन बनता है। वृंदावन गोवर्धन यमुना नंदगांव बरसाना जावट के बिना नहीं हो सकता है। तो उधर भगवान अभी भी खेल रहे हैं, रोज जा रहे हैं आ रहे हैं घर में जा रहे हैं रोज आ रहे हैं गौचारण कर रहे हैं खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, वो रूप वहां पर है। और एक रूप वहां पर काम्यवन में उसी समय पर 3 करोड़ पत्नियों के साथ रास नृत्य कर रहे हैं। रास नृत्य करते ही करते समय सबके आंखों से प्रेम के अश्रु बहते हैं, दिव्य अश्रु जल। यहाँ के जो अश्रु होते हैं ना उसको अपवित्र माना गया है, पूजा में कभी अश्रु गिरने से तुरंत आचमन करना पड़ता है। यहाँ का जो पसीना है जिसको पसीना होता है वो बहुत अपवित्र माना गया है, उसका कहीं स्पर्श होने से चीजें अपवित्र हो जाती हैं पूजा के समय। लेकिन उसको पसीना नहीं कहते, उसको स्वेद कहते हैं। जब वो भगवान के शरीर से निकलता है तो उसको स्वेद बिंदु कहते हैं। वो बहुत सुगंधित होते हैं और बहुत पवित्र होते हैं। तो जो यहाँ पर मल मूत्र के समान मानते हैं ना, अश्रु कान में जो द्रव्य निकलता है वो या तो पसीना निकलता है शरीर के रंध्रों से, वो जो मल मानते हैं वो सब कुछ पवित्र है जब भगवान के शरीर से निकलता है। तो सारे जो अश्रु और भगवान के शरीर से पसीना यानी स्वेद निकला वो सभी 3 करोड़ कन्याओं पत्नियों के शरीर से निकला और भगवान से भी निकला, और वो सारा एकत्रित होगा एक जगह पर विशाल, आज की तारीख में भी वो विशाल कुंड है बहुत ही विशाल। तो वो सब जलाशय जब निर्माण हुआ ना, तो जलाशय निर्माण होते ही 68,000 तीर्थ जो है उसमें उन्होंने प्रवेश कर दिया तुरंत, क्योंकि तो ब्रज भूमि इतनी पवित्र है उसमें भगवान के शरीर से दिव्य जल का निर्माण हुआ है एकत्रित हुआ है। तो वो सारे धाम जितने भी हैं उसमें निवास करना चाहते हैं, उसमें आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। तो सब आश्रय ग्रहण किया तो उस कुंड का नाम पड़ा विमल कुंड, आज भी उसको तीर्थराज विमल कुंड कहते हैं। उसमें वरदान ऐसे भगवान ने तुरंत वरदान दिया, इसके पास भी जो आएगा इसका स्मरण भी जो करेगा इसकी जल में जो आचमन करेगा इसमें जल में जो उतरकर स्नान करेगा वो व्यक्ति दोबारा इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा, सीधे भगवत धाम चला जाएगा जीवन के अंत में, ऐसा वरदान दिया है। और इतना रमणीक स्थान है वो, इतना रमणीक स्थान है। और भगवान जब कुछ निर्माण करते हैं तो वैसे बाद में कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें फिर जल विहार करते हैं, नौका विहार करते हैं, जल केली क्रीड़ा करते हैं, बच्चे खेलते हैं, ग्वाल वाल गायों को लेके जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। तो ये हो गया विमल कुंड, है ना। फिर भगवान ने एक बार वत्स यानी बछड़े को मारा। उसकी कहानी ऐसी कि वो बछड़ा जो है ना वो राक्षस था, कंस की तरफ से आया था, और वो बछड़ा बनकर सब बछड़ों में घुस गया। तो भगवान ने, अभी देखिए बहुत विशेष बात है ये, भगवान के साथ करोड़ों ग्वाल बाल हैं और करोड़ों बछड़े हैं। कोई ऐसा अनंत संख्या में भगवान के पास भी है, ग्वाल बाल भी अपने भी लेके आते हैं। और एक लीला होती है भगवान की, उसको कहते हैं वत्सपाल लीला। जब भगवान 5 साल से छोटे थे ना, तो उनको बछड़े दिए थे चलाने के लिए, बछिया और बछड़े, और भगवान के अलग सब लोगों के अलग, उसे करोड़ों बछिया और बछड़े हुआ करते थे। और जब वो 7 साल 5 साल के पूरे हो गए, तभी उनको बड़ी गायों और बैलों का भार दिया गया, तो वो गोपाल बन गए। तब तक वत्सपाल में थे। तो वत्सपाल लीला अलग प्रकार की है, गोपाल लीला अलग प्रकार की है। तो वत्सपाल लीला में वो वत्स यानी बछड़ा बनकर घुस गया राक्षस। विशेष बात जानने वाले समझने वाले ये है कि जितने भी बछड़े और बछिया भगवान के साथ सुबह चलते थे, वो सबको इंडिविजुअली भगवान और सब ग्वाल बाल पहचानते थे। करोड़ों होने पर भी नाम से पहचानते थे और जानते थे कि किसका बछड़ा है, उसका नाम क्या है। तो जब भगवान ने इस बछड़े को देखा, तुरंत उन्हें नोट किया कि ये सवेरे हमारे साथ नहीं आया था। सच अ फैंटास्टिक थिंग टू मेडिटेट कि भगवान के साथ में होना, मतलब भगवान जब चलते हैं ना, तो कितने घास के पत्ते होंगे रस्ते पर, कोई गिन सकता है क्या? लेकिन हर एक घास का पत्ता एक जीव है और भक्त है भगवान का। गौ लोग वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में, और एक एक घास का पत्ता भी भगवान का परम भक्त होकर वहां पर घास का पत्ते का जन्म लेकर भगवान के पैरों को मुलायमता का आनंद देने के लिए खड़ा है। जब भगवान चल रहे हैं तो हर एक घास का पत्ता कितना मुलायम हो सकता है, वो अपनी पराकाष्ठा कर रहा है, वहां पर पीक लेवल पे कोशिश कर रहा है कि मेरे तरफ से भगवान को चरणों को एकदम मुलायमता का अनुभव हो। तो वो हर एक घास के पत्ते के साथ भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रतिसाद रिस्पॉन्स देते रहते हैं। हर एक पंछी जो बोलता है ना, आपको लग रहा होता कि बहुत सारे पंछी बोल रहे हैं, यहाँ पर तोता बोल रहे हैं, यहाँ पर मैना बोल रही है, यहाँ पर कोयल बोल रही है, यहाँ पर और कोई बोल रहा है, तो क्या सब आनंद है। लेकिन भगवान जब उनका आवाज निकाल कर, यहाँ को लग रहा है कि मजाक हो रहा है, आनंद हो रहा है, भगवान सब पक्षियों का आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन हर एक पंछी को भगवान उनकी आवाज में जवाब देते हैं, प्रतिसाद देते हैं उनके प्रेम के लिए। आप सोच सकते हैं, वैसे ही हर एक ग्वाल बाल, हर एक ग्वाल बाल के जो बच्चियां बछड़े हैं, सबको 1-to-1 रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए जब ये आया बीच में, तो उनको भगवान ने पहचाना कि ये हमारे में से नहीं है, ये दूसरा है। बलराम को साथ में लिया, बताओ देखो उनकी आंखें देखो ऐसी लाल लाल है, वो जो इनोसेंट भाव होता है ना, ये निरागस भाव, निष्पाप भाव उसकी आंखों में नहीं है। उसका चेहरा देखो किस तरह से घूर घूर कर क्रूरता से देख रहा है हमारी, उसका वध किया जाए। तो पीछे से जाते हैं, उसके पूंछ से पकड़ते हैं, उसको पटक से घुमा घुमा के मार देते हैं उसको। और बड़े ऐसे क्या कहते हैं ना, गर्व से ऐसे गोपियों के पास में आते हैं, देखो हमने कैसे पहचाना और कैसे वध किया। लेकिन गोपियां कहती है कि अरे हमारे से बात मत करना आप, ये बछड़े बछिया हमारे दैवत हैं, हम उनको पूजते हैं, ये वंदनीय है, पूजनीय हमारे लिए, आपने उनका वध करके आप ऐड कर रहे हो, नहीं कर सकते बात आपके साथ, बोले क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि आपको सारे विश्व में जितने तीर्थ हैं, 14 भुवन में, स्वर्ग लोकों में, पाताल लोकों में, पृथ्वी लोक में जितने तीर्थ हैं, वो सब में आपको स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो स्मरण करते हैं सभी धामों को बुला लेते हैं, सभी धाम के जो व्यक्ति हैं ना, जो पर्सनैलिटीज ना, पर्सोनिफाइड, सब वहां प्रकट हो जाते हैं। क्या आदेश है, सब गोपियां देख रही हैं, सब खड़े हैं, सज धज के जो ऐश्वर्य संपन्न धाम है, भगवान के भक्त हैं। वो कहते हैं मैं अभी एक सेकंड रुको, मुरली निकालते हैं और मुरली से एक कुआं बना देते हैं तुरंत। हमको कुआं बनाने में कितना लगता है, कोई किसान है यहाँ पर, एनीबडी बाय बर्थ एनी फार्मर इज देयर हियर? बहुत समय लगता है कुआं बनाने में, बहुत उसमें तकलीफ होती है। भगवान ने एक सेकेंड के अंदर कुआं बना दिया, और बोले सब मैं इस कुएं में प्रवेश करूँ, सब लोगों ने कुएं में प्रवेश किया, ऐसा फ्लड हो गया वो, तो सब उन्होंने सब लोग ने स्नान किया, ग्वाल बालों ने भी किया, कृष्ण बलराम ने भी किया, वो कह रहे कि अभी हम उस पाप से मुक्त हो गए। तो वो क्या स्थान है, भांडीर वन। और भांडीर वन में पिछली बार मैंने यहाँ पर कथा की थी, तो बताया था कि भांडीर वन में भगवान का विवाह हुआ था राजा रानी के साथ, गुप्त विवाह, और वहीं पर ये वेणुकूप भगवान ने निर्माण किया। उसका ऐसा वरदान है कि उसमें स्नान करने से सारे तीर्थों को स्नान करने का लाभ है, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, विमल कुंड, इसमें से किसमें भी स्नान करेंगे तो सभी विश्व के जितने तीर्थ हैं उसमें स्नान करने का लाभ पुण्य मिलता है। और एक लाभ है उसके अंदर कि जो माताएं जो पत्नियां जो होती है वो गर्भवती नहीं होती, उनको बालक नहीं होता है, उनको वहां जाकर कभी कौन से दिन पे होता है वो वेणुकूप, हाँ सोमवती अमावस्या, जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या आती है उस दिन वो वेणुकूप फ्लड हो जाता है, ओवर फ्लडेड, उसमें सारी माताएं वहां पर आती है और वहां पर विधि विधान करते हैं और उसमें स्नान करते हैं, उसका जलपान भी करते हैं, तो उनको पुत्र संतान प्राप्त होने का वरदान दिया गया है, ऐसा उसका महात्म्य है। और एक जगह है वृंदावन में जिसका नाम है उच्च उच्च ग्राम, जिसको आज की तारीख में ऊंचा ग्राम कहते हैं, ऊंचा गांव, वो ललिता देवी का गांव है। जैसे राधा रानी जहाँ रहती है वो बरसाना है, वो सेंट्रल जैसे कमल कैसा होता है ना उसमें बीच में जगह होती है, वर्ल कहते हैं उसको, बीच का स्थान, धान स्थान, उसको वो बरसाना माना गया है। और आठ प्रधान पंखुड़ियां हैं गुलाब की, ये कमल की, वो आठ है जो है वो आठ सखियों के गांव हैं, ललिता विशाखा उनके अलग अलग गांवों के नाम हैं, और वो चारों तरफ बरसाने के घिरे हुए हैं। उसमें जो प्रधान सखी है राधा रानी की वो है ललिता देवी, उसका गांव वहां से 4 किलोमीटर दूर है, वो भी पर्वत पर है, छोटा सा अटोर पर्वत कहते हैं उसको, अशोक पर्वत नाम है उसका लेकिन ऐसे लोग अटोर पर्वत बोलते हैं। अशोक गोप और शारदा देवी उनके माता पिता का नाम है। तो उस गांव में भगवान के जाने के पश्चात, मतलब आज से 400 साल पहले, नारद मुनि के अवतार हुए, इनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी। और ब्रज का जो खोया हुआ कल्चर है ना उस समय, आज भी ब्रज में अभी उन्होंने जागृत किया दोबारा उसको, उसको कहते हैं रासलीला, यानी कि रासलीला मतलब डांस नहीं, रासलीला का मतलब होता है कि भगवान की लीलाओं को नाट्य रूप में प्रकट करना, उसको रासलीला संस्कृति कहते हैं। वो लोप हो गई थी तो उन्होंने ब्रज में फिर दोबारा रासलीला नाट्य प्रस्तुति का जो संस्कृति थी उसको दोबारा एस्टेब्लिश किया, और बहुत सारे चीज़ों को भी प्रकट किया उन्होंने। स्वयं राधा रानी का विग्रह भी प्रकट किया, राधा रानी ने स्वप्न दिया उनको, और बरसाना के भानुगढ़ के पत्थर में से उन्होंने राधा रानी के और कृष्ण के लाडली लाल के विग्रह प्रकट किए, और बहुत सारे सुंदर सुंदर काम किए। तो बड़े महात्मा थे, बहुत सारे शास्त्र लिखे उन्होंने, ब्रज प्रेमानंद सागर, ब्रज भक्ति विलास, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, और ब्रज के अंदरूनी अंतर्गत लीलाओं का वर्णन किया उसके अंदर। तो इतने सिद्ध महात्मा थे, वो ऊंचा गांव में रहते थे, ऊंचा गांव में ललिता देवी के गांव में बलराम जी और बलराम जी की पत्नी रेवती, ये भी ललिता जी को मिलने आई थी, क्योंकि ललिता जी और रेवती जी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो जब रेवती जी का विवाह बलराम जी से हुआ तो अपने पति को, नए नए पति को लेकर रेवती जी ललिता जी को मिलने के लिए ऊंचा ग्राम आई थी। तो वो भी जो विग्रह थे बलराम जी रेवती के, वो भी नारायण भट्ट गोस्वामी ने प्रकट किए हींस की झाड़ी में से, ऐसे अद्भुत कार्य किए। तो सब ब्रजवासी उनके पास आए और कहने लगे कि हमने सुना है त्रिवेणी संगम जो है वो बहुत पवित्र है, गंगा यमुना सरस्वती वहाँ मिलती है और सारी जनता वहाँ पहुँचती है, लेकिन हम बेचारे गरीब हैं और हम इतने दूर पहुँच नहीं सकते हैं, आप बड़े सिद्ध महात्मा हो, क्यों नहीं आप गंगा यमुना सरस्वती को यहाँ प्रकट करते हो। तो प्रामाणिक भक्तों की निष्पाप निरो इनोसेंट इच्छा को लेकर प्रभावित हो गए वो, और अपने भक्ति के बल से उन्होंने गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों को वहां प्रकट किया उच्च ग्राम में। तीन नदियां तीन दिशा में प्रकट हो गई, बड़े जल के साथ हाँ प्रवाहित हो गई, और फिर वो सबके आंखों के सामने एकत्र हो गई और एक कुएं में चली गई। यानी क्या हुआ, जब एकत्र हो गए तो क्या प्रकट हुआ, प्रयाग प्रकट हुआ ना, नदियां प्रकट हुई फिर एकत्र हो गई तो प्रयाग प्रकट हुआ, और वो प्रयाग प्रकट होकर वो कुएं में चला गया। तो आज भी सोमवती अमावस्या के दिन उसको फ्लड आता है, कुंभ मेला के समय उसको फ्लड आता है, तो सब ब्रजवासी लोग जो है कुंभ मेला वहां जब होता है, किधर भी होता है ना, हरिद्वार में या त्रिवेणी में या उज्जैन में कहीं भी होता है, उस समय सारे ब्रजवासी वहां जाते हैं। उसका महात्म्य क्या है, उसका महात्म्य यह है कि समझो आप त्रिवेणी गए और स्नान किया तो सारे पुराने जन्मों के जितने संचित हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और आपने अगर इस त्रिवेणी में स्नान किया ऊंचे गांव में जाकर तो वो सारा लाभ आपको मिलेगा जो आपको त्रिवेणी जाके मिल रहा है, लेकिन साथ में पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ में भगवत प्रेम भी भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, वो वहां पर जाने से प्राप्त नहीं होती है। गया जाने से, त्रिवेणी जाने से, बद्रीनाथ जाने से, वो सब जो है केवल पाप और नष्ट हो जाते हैं। अब पुण्य नष्ट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि पुण्य अगर बचेंगे तो पुण्य को भोगने के लिए फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के लिए फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग जाने के बाद लाखों लाखों साल जीना पड़ेगा और उस पुण्य का भोग लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति भक्ति का कोई गारंटी नहीं वहाँ पर, इसलिए जो भक्त होते हैं वो पुण्य भी रखना नहीं चाहते, क्योंकि पुण्य रखने से दोबारा आना पड़ेगा, उनको वापस नहीं आना है, भगवान के धाम में जाना है। ऐसे त्रिवेणी संगम को उन्होंने ऊंचा नाम में प्रकट किया, ऐसा वृंदावन धाम है। अभी काम में उन्हें और एक बात हुई, केदारनाथ बद्रीनाथ तो प्रकट किया भगवान ने, और काम्यवन में क्या नहीं है? काम्यवन में विमल कुंड है, काम्यवन में परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी में प्रदक्षिणा करके क्षत्रियों का संहार करके जो कार्य किया, उसके बाद में पश्चाताप करने के लिए 9 कुंड बनाए, वो काम्यवन में है। काम्यवन में जब पांडव लोग वनवास कर रहे थे द्वापर में, भगवान नहीं आए अभी तक, उसके पहले भगवान है लेकिन साथ साथ में पांडव का वनवास भी चल रहा है, तो पांडवों ने वनवास में काम्यवन में एक जगह निवास किया था, वो भी जगह है। और जिस जगह पर पांडवों ने जो माताजी ने कहा था कि जल लेके आओ, तो पहला गया वापस नहीं आया, दूसरा गया वापस नहीं आया, लास्ट में धर्मराज गए और यक्ष ने प्रश्न किया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, चार भाई मरे पड़े हुए हैं, तुम भी मर जाओगे अगर नहीं लोगे तो उत्तर। तो यक्ष ने फिर प्रश्न पूछे और धर्मराज ने देखा कि मेरे इतने बलशाली अवध्य अजेय भाइयों को जो बिना शस्त्र के, बिना किसी घाव के, बिना एक बूंद खून निकाले हुए मार सकता है, वो कोई इतना बड़ा प्रभावी बल बल होगा वो, जो जो भी है शक्ति, तो मुझे फिर उसके सामने गुस्सा क्यों नहीं करनी चाहिए? नम्रता से उन्होंने उत्तर दिए, तो यक्ष प्रकट हो गए जो धर्मराज के पिताजी थे, हाँ, यमराज स्वयं। और फिर उन्होंने अपने भाइयों को भी जीवित कराया उनसे, वो भी धर्मकुंड कहते हैं उसको, वो भी उधर विराजमान है। और काम्यवन जैसे मैंने कहा कि भगवान के खास करके वात्सल्य लीला बाल लीला का स्थान है, तो वहां पर एक बार गोपियां भी थी साथ में और ग्वाल बाल भी साथ में थे, भगवान भी उनके साथ विचार विहार कर रहे थे। तो अचानक गोपियों ने कहा, अरे हमने सुना है कि तुम पिछले अवतार में प्रभु रामचंद्र थे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे मैं तो सिंपल नंद बाबा का बालक हूं, मुझे क्यों आप बोल रहे हो, तो भगवान है रामचंद्र। हाँ ना बहुत संकोच में, हाँ ना। फिर सखियां कहती हैं कि देखो अभी आप नहीं दिखाओगे ना हमको राम जी का स्वरूप, तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। अभी आप सोचें क्या बड़ी बात है, उसने बात करना बंद करो तो ठीक है, चले जाओ मैं भी चला जाता हूँ। लेकिन भगवान के लिए अगर कोई ग्वाल बाल बोलता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर कोई गोपी कहते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, उनके लिए वो सबसे बड़ा धर्म संकट है, बिगेस्ट पेन इन लाइफ। जो ग्वाल बाल से उतना प्रेम करते हैं वो, अगर बोलेंगे कि बात नहीं करेंगे आपके साथ में, तो इट्स लाइक थंडर बोल्ट, इनटॉलरेबल, असह्य चीज है उनके लिए वो। तो जब गोपियां ये अस्त्र छोड़ते ना कि बात नहीं करेंगे, तभी वो तुरंत बोलते हैं आग बंद करो। हाँ अच्छा है ना आग बंद करना, आप भी कर सकते हैं। भगवान ऐसे कृपालु हैं, आग बंद करके बोलते हैं, फिर आग खोल खोल दो बोलते हैं, तो क्या होता है, सारी गोपियां एक तरफ, प्रेक्षक के हिसाब से बैठे हैं, मैं यहाँ एक तरफ हूँ, आप सारे एक तरफ हैं, सारी गोपियां एक तरफ प्रेक्षक की तरह जमा हो जाती है, और इस तरफ श्री कृष्ण जो है वो नीले हैं, वो हरे रंग के राम बन जाते हैं धनुष धारण करके, बलराम जी गोरे रंग के हैं, वो गोरे रंग के लक्ष्मण बन जाते हैं धनुर्धारी, और सारे ग्वाल वाल जो है वो कौन बन जाते हैं, बंदर बन जाते हैं, वानर सेना। और भगवान ऐसे आते हैं राम बनकर, ऐसे दुखी होकर सीता को खोज रहे हैं, और आते हैं वहां पर एक जगह बैठकर लिंग को स्वापन करते हैं। ये सब काम्यवन में हो रहा है, रामेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, काम्यवन में हो रहा है। और रामेश्वर महादेव को स्थापन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और जैसे ही पूजन करके निकलते हैं, तो जैसे ही वो चलने लगते हैं ना, वहां सागर प्रकट हो जाता है। एक जगह बैठकर प्रेक्षक में सब गोपियां देख रही हैं, विशाल सागर पैदा होता है, हिंदी महासागर। रामेश्वर कौन सा सागर है ना, भारत का लास्ट पॉइंट, तो वो वहां प्रकट हो जाता है। और अभी भगवान रामचंद्र को कितना समय लगा सेतु बांधने के लिए? कुछ समय लगा उनको, बहुत समय लगा उनको, कहाँ कहाँ से पत्थर लाने पड़े, हनुमान जी यहाँ से वहां, हिमालय से वापस आ रहे, भारत के कोने में आ रहे, वहां से कोने में से एक कोने में आ रहे, उत्तर दिशा से कोने में से दक्षिण दिशा के कोने में आ रहे, और पर्वत पर्वत चट्टाने डाल रहे, और टाइम लिमिट भी था, सीता ने कहा था इस समय के बाद में आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसके पहले आपको आके मुझे बचाना है। तो काफी टेंशन था, फिर भी बहुत समय लगा था उनको। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र के रूप जो लिया भगवान ने, कुछ क्षणों में पूरा सेतु बांध दिया उन्होंने। सबके आंखों के सामने ऐसे पत्थर चट्टानों की एक दरार ऐसी पैदा हो गई, उसमें से चलकर कुछ ही क्षणों में सब लोग लंका पहुंच गए। जैसे लंका पहुंच गए, त्रिलोक विजयी रावण, हाँ मैं त्रिलोक विजयी रावण, एको हम द्विजो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रावण दशानंद प्रकट हो गए, इन्होंने तुरंत अपना बाण लगाया, रावण को मारा, रावण वहां पर धराशायी हो गए। सब लोगों ने तालियां बजाई, सब गोपियां बैठ कर देख रहे हैं ना ड्रामा। इस तरह से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में रामेश्वर, समुद्र, सेतु बंद, रावण का प्राकट्य, रावण का वध करके सब लोग ऐसे वीरता से आ गए। फिर उन्होंने कहा आंखें बंद करो, फिर आंखें बंद कर दी, प्रभु कहा कि खोलो वापस, कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल आए और सब लोगों ने गले लगाए, वाह वाह क्या बात है। लेकिन वो समुद्र, सेतु बंद, लंका और रामेश्वर वहीं रह गया। इस तरह से भगवान ने काम्यवन में इतने सारे धाम प्रकट कर दिए। फिर एक बार ग्वाल बालों ने इच्छा किया कि सब लोग जाते हैं गया श्राद्ध करने के लिए अपने माता पिताओं को, हमको भी जाना है। बोले कोई जरूरत नहीं, मैं गया धाम को इधर बुला लेता हूँ। वो जहाँ पर आज सेतु बंद है ना, उसके केवल 10 मिनट वॉकिंग पे रोड साइड पे रोड टच ही गया कुंड है। गया कुंड की विशेषता क्या है? गया कुंड में जाएंगे, श्राद्ध करेंगे तो वो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु भी अपने पिता के लिए गए थे वहां पर, तो वो गया कुंड में आप वहां पर स्नान करेंगे। तो गया में स्नान करने का लाभ क्या है? मुक्ति। लेकिन यहां पर आप स्नान करेंगे तो जिनका भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं वो सबको वैकुंठ धाम नहीं गौलोक धाम प्राप्त हो जाएगा प्रेमा भक्ति के साथ में। और ये भी वरदान है उस धाम में कि आप वहां जाएंगे, केवल आप समझो पहुंच गए, शरीर से पहुंच गए, वहां पर उतर गए वहां पर, या किनारे बैठे हुए, या तो आचमन कर रहे हैं, या तो स्नान करेंगे, या विधि विधान करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है, आप बैठेंगे और केवल अपने माता जी के साइड के कितने लोग गुजर गए हैं उनको याद करेंगे, पिताजी के साइड में कितने गुजर गए हैं उनको याद करेंगे, और पत्नी के साइड में कितने गुजर गए उतने याद करेंगे। तो जिनको जिनको याद करेंगे वो सब लोगों को प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। देखो तो केवल भगवान ने इन सारे धामों को आश्रय नहीं दिया है ब्रज में, उनको तो आश्रय चाहिए, लेकिन वो जब धाम ब्रज में भगवान के आश्रय ग्रहण करते हैं तो वो कैसे होते हैं? अधिक 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 दयालु हो जाते हैं। जितने दयालु ब्रज के बाहर हैं वो उससे भी अधिक दयालु ब्रज के अंदर आने से प्राप्त होते हैं। और साथ साथ में कृष्ण भगवान का गुण क्या है? वो सबको प्रेमा भक्ति देते हैं, तो कृष्ण भगवान का गुण जो है वो भी आत्मसात कर लेते हैं। और किसी किसी धाम में आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह पर एक ही वरदान है, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति मुक्ति की बात ही नहीं करता है कोई ब्रज में, सब मुक्ति की बातें ब्रज के बाहर होती है। ये धाम में जाएंगे, उधर द्वारका की नदी में स्नान करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी, इधर प्राप्त होगी, प्रेम भक्ति का उल्लेख कहीं बहुत विरला होता है। लेकिन ब्रज में हर जगह पर प्रेम भक्ति का उल्लेख है, और वही धाम जो बाहर से अंदर आते हैं वो सब प्रेम भक्ति देने लगते हैं। एक बार ऐसे ही यमुना जी में प्रभुपाद जी स्नान कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी वृद्ध थे ना, तो उनको जरा समय लगता था कपड़ा निकालने में, यंग लोग ऐसे धड़ाधड़ निकाल के जंप मार के तुरंत ऑलरेडी स्नान करने चालू हो गए थे वो। तो प्रभुपाद जी जब कपड़े उतारे और पानी में उतरने वाले थे, तो अभी संत हैं वो, गुरु हैं, उनके शिष्य लोग साथ में हैं, तो कुछ ना कुछ उपदेश देना चाहिए। तो उन्होंने उपदेश करना शुरू किया कि यमुना जी में स्नान करने के पाप और पुण्य नष्ट हो जाते, तो जो अंदर गए थे वो सब बाहर आ गए, बाहर भाग के, क्योंकि पाप तक ठीक था लेकिन पुण्य में जा रहे तो भाग के आ गए सब लोग। तो प्रभुपाद जी समझाया कि पाप और पुण्य में से खराब क्या है? यस, दिल से उत्तर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बचा आपको? गोलमाल उत्तर नहीं चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि पाप और पुण्य में से खराब कौन है? कॉमन आंसर तो ये है, लेकिन सॉरी उत्तर गलत है आपका। क्योंकि कैसा है ना, जब पाप करते हैं हम लोग या पाप हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो पाप का फल जब होता है ना, आप भोग रहे हो पाप का फल, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत वेदना होती है, पीड़ा होती है, यातना होती है, तो उसमें भगवान को याद करना आसान होता है। नास्तिक भी होगा ना, बहुत गर्व से अपने ऑफिस में बैठता है और वो बोले मुझे किसी संत से नहीं मिलना है, उनको बोलो जाओ ना टाइम नहीं है। वो जब भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, बहुत बीमारी से, दर्द में, पीड़ा से, तो सिस्टर को बोलते हैं सिस्टर जरा भगवान से प्रार्थना करना, आप लगते हो सब लोग भक्त हो, आप जरा प्रार्थना करना। नास्तिक आदमी भी जब पीड़ा में आता है ना तो वो अपने आप आस्तिक बनने लगता है, बोले टेम्पररी टाइम के लिए क्यों ना हो लेकिन बनता है जरूर। तो और पुण्य का फल जब भोगते हो आप, आपको बहुत धन मिलना शुरू होता है, बहुत अप्सरा जैसी पत्नी मिल जाती है, बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो वो पुण्य भोगते समय क्या होता है, हे भगवान कहाँ हो आप, ऐसे याद करते हो क्या भगवान को, देखो कितनी सुंदर पत्नी है, देखो कितना अच्छा ऐश्वर्य है, कहाँ हो आप भगवान, नहीं याद करते हैं। पुण्य को भोगते समय भगवान की याद नहीं आती है, और यहां पर पुण्य को भोगते हुए तो भगवान की याद होना मुश्किल है। स्वर्ग लोक में जाएंगे और वहां जाकर पुण्य का फल भोगेंगे तो और मुश्किल है, वहां तो बिल्कुल ही याद नहीं आती भगवान को। वो तो दुर्वासा मुनि वहां पर वैकुंठ लोक से विष्णु की महाप्रसादी माला लेकर जब इंद्र को मिलने जाते हैं तो इंद्र उसको ऐसे ही छोड़ के हाथी को दे देता है, क्योंकि वो अप्सराओं का डांस देख रहा है, तो वो ये देख रहा नहीं कि मेरे गुरुजी महाराज संत महाराज आए वैकुंठ से विष्णु की माला लेकर आए, तुरंत डांस बंद करके उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन डांस इतना अच्छा है कि वो दुर्लक्ष्य कर देते हैं। वो माला लेते हैं और हाथी को देते हैं, हाथी लेकर उसको पैर में कुचल लेता है, और एक क्षण में शाप प्राप्त होता है कि तुमने विष्णु की माला को हाथी के पैर में दिया है, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, एक क्षण में वो राज्यहीन हो जाते हैं। तुरंत बलि महाराज आकर आक्रमण करते हैं, उनको राज्यहीन करके भागकर गुफाओं में छुपना पड़ता है ना। बाद में आई भगवान की याद, भगवान सब विष्णु पास गए, अरे बलि महाराज को कुछ करो, फिर वामन देव आए। तो याद कभी आई भगवान की, जब भी पीड़ा हुई ना तब जाके विष्णु के पास गए, फिर विष्णु भगवान वामन बनकर आए, लेकिन जब अप्सराओं का डांस देख रहे तभी याद आई क्या उनको, यही प्रॉब्लम है। सोचने वाली बात है हाँ, ये बात आपको केवल इस्कॉन में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी प्लीज। पाप जो है वो पुण्य से अच्छा है, पाप करना नहीं चाहिए इसके लिए, लेकिन कह रहा हूं अगर आपको चॉइस दिया जाए, क्योंकि पुण्य में भगवान की याद नहीं आती है। और भक्त लोग कैसे सोचते हैं कि जो चीज भगवान का स्मृति दिलाती है वो अच्छी है, वो शुभ है, वो पवित्र है, और जो चीज भगवान को भुला देती है वो कितनी भी अच्छी होगी वो अशुभ और अपवित्र है। और ये हमको समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज ऑस्पिशियसनेस, व्हाट एवर रिमाइंड्स यू ऑफ कृष्णा इज ऑस्पिशियसनेस, व्हाट एवर मेक्स यू फॉरगेट कृष्णा इज इनऑस्पिशियसनेस। तो इसलिए वृंदावन में जाने से सब कुछ पवित्र क्यों होता है, क्योंकि वहां पर पाप पुण्य स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसको। एक एक कदम चलेंगे ना आप, तो आपको हर एक कदम के साथ में एक अश्वमेध कर यज्ञ करने का लाभ मिलेगा। अभी अश्वमेध यज्ञ क्या है ना, उसके लिए अलग प्रवचन देना पड़ेगा, कितने हजारों साल लगते हैं एक अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के लिए, लेकिन एक एक कदम आप जब डाल रहे हो वृंदावन धाम में जाने अनजाने में, तो एक एक कदम के साथ आपको अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिल रहा है। रात को आप सोएंगे वृंदावन धाम में तो भी आपको कई राजसु यज्ञ करने के और हजारों करोड़ों गौ दान करने का लाभ मिलेगा, खर्राटे भरने से वृंदावन धाम में, सोचो आप। तो हर एक कृति जो प्रामाणिक हृदय से या प्रकृति के नियम के अनुसार आप करते हैं, वो हर एक के लिए यहां पर बेनिफिट है, पहुंचने के लिए बेनिफिट है, रहने के लिए बेनिफिट है। वहां का जलपान रस का सार है, वहां का प्रसाद रस का कॉन्सेंट्रेटेड स्वरूप है, वहां का हर वाक्य गीत है, वहां का हर कदम डांस है, ऐसा वृंदावन धाम। और सबसे बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि वहां पर भगवान भगवान बनकर नहीं रहते हैं, सबसे विशेष बात है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी भी रूप में आप उनको अपने आप को पेश कर सकते हो और भगवान भी उसी रूप में आपके लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। घास बन पैरों को अगर को मुलायमता दे रहा भगवान भी उसको रिस्पॉन्स देते हैं, पंछी बनकर आप कुछ बोल रहे हो भगवान पंछी की आवाज में आपको रिस्पॉन्स देंगे। आप ब्रज की लीलाओं को गहराई से पढ़ेंगे ना तो कई बार एक जनरल वातावरण आता है एक्सप्लेनेशन कि भगवान जा रहे थे बलराम जी को लेकर और ऐसे पंछी बोल रहे थे, भगवान भी पंछी की आवाज़ देंगे, आपको लगेगा ठीक है विल गो अहेड, आगे क्या हुआ धेनुकासुर का वध हुआ वो पढ़ेंगे, लेकिन आप सोचेंगे ना तो वो सामान्य वर्णन में भी भगवान हर एक पेड़ को, हर एक शाखा को, हर एक पंछी को, हर एक जीव को, हर एक खरगोश को, हर एक जीव को प्रतिसाद दे रहे हैं। वृंदावन धाम का एक विशेषता है, सो पर्सनल, हाईएस्टली पर्सनल, सर्वोत्तम तरीके से व्यक्तिगत रूप में जो आदान प्रदान है वो श्री वृंदावन धाम में होता है। वैकुंठ में भी वैसा नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ में एक रस है, ऐश्वर्य, ऑ एंड रेवरेंस, सब लोग ओम नमो नारायणाय, सब उसी भाव में सब वंदन करके गीत गाते जा रहे हैं और श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, गौरव कर रहे हैं भगवान का, उसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान के सभी प्रकार के रसों का यहाँ पर प्रतिसाद प्राप्त होता है। तो ये है वृंदावन धाम। और जो वृंदावन धाम में जाता है, एक बार अगर वो वृंदावन धाम में सही चेतना में जाता है, इन राइट कॉन्शियसनेस, एक ही बार, तो उसको दोबारा इस विश्व में आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग बार बार जाते हैं, लेकिन सही चेतना में जाना एक चैलेंज है। अपनी चेतना को निर्माण करना उस प्रकार से, कौन सी चेतना है वो कहकर हमारा आज का कथा हम समाप्त करेंगे। वो चेतना यह है कि त्रिनादपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसका मतलब है सब लोगों को सम्मान देना, खुद के लिए किस सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। नम्रता में तृण का पत्ता जो है वो किसी उसके अधिक नम्र कोई बन नहीं सकता है, लेकिन उसके समान या उसकी तरह बनने की तमन्ना करना, जो कुचल जाने पर भी कभी बुरा नहीं मानता है, अपना सेवा करते रहता है, चाहे कुचल दो या रखो उसको अच्छी तरह से, वो वैसे ही रहता है, उसको दबा दो फिर भी खड़ा हो जाता है। वो तृण के पत्ते जैसे नम्रता, और पेड़ से भी अधिक सहनशीलता। पेड़ कैसा रहता है, खुद गर्मी सहता है, आपको छाया देता है, खुद बर्फ की ठंडी सहन करता है, अपनी लकड़ी से जलाकर आपको उष्णता देता है, ये बहुत ज्यादा सहनशीलता है। मतलब आप कुछ की सहन कर सकते हो, लेकिन वो सहन करते समय दूसरों की सेवा करते रहना इज वेरी डिफिकल्ट। आप खुद सहन करो यही बड़ी बात है, आप खुद टॉलरेट कर रहे हो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है, लेकिन खुद वो भयंकर कष्टों को सहन करते हुए एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरों की सेवा करना ऑन द स्पॉट, वो वृक्ष का गुण है। देते रहना फिर भी लोगों को, विपरीत रूप से देते रहना, तो वो सहनशीलता। और ये शायद दो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, सहनशीलता और नम्रता, लेकिन दूसरे के लिए आदर की भावना और खुद के लिए आदर की अपेक्षा नहीं करना, ये सब करने से क्या होता है, भगवान हरि का नाम हम निरंतर ले सकते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। और ये भाव लेकर, सेवा भाव लेकर, भगवान का दासानुदास का भाव लेकर जब ब्रज में प्रवेश करेंगे ना, तो फिर हमको ये एक ही बार जाने से दोबारा न आने का इंतजाम हो जाएगा। वो जो रज है जिसमें हम प्रवेश करते हैं ना ब्रज में, वो एक भी रज का कर्ण देवताओं को प्राप्त नहीं होता है, देवता लोग आ नहीं सकते उसके अंदर। आएंगे तो भगवान के काम के लिए आएंगे, तुरंत निकल जाएंगे। रात के निवास करने का गुंजाइश देवताओं के लिए ब्रज में नहीं है। और हम और आप मानव जीवन में वृंदावन में जाकर रात भी गुजार सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, भगवान का महाप्रसाद खा सकते हैं, जो ब्रह्मा जी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, है ना। तो ब्रह्मा जी एक बार गए थे मछली बनकर के, भगवान हाथ धोएंगे जमुना जी में, तो हाथ से निकला वो महाप्रसाद में खा लूंगा मछली बनकर। तो भगवान ने देखा हाथ धोने गए, वो ब्रह्मा जी को देखा कि मछली बनकर खड़े हैं, दोना में पानी लिया और जमीन में आके हाथ धोया। तात्पर्य क्या है इसका, ब्रह्मा तक भी देवताओं को वहां का महाप्रसाद अवेलेबल नहीं है। और वो हम लोग तो जाके कृष्ण बलराम का महाप्रसाद खाते हैं ना, कि लाडली लाल का खाते हैं, नंदगांव में जाके खाते हैं, अनंत बार खा चुके हैं। तो देवताओं को भी भाग्य अवेलेबल नहीं है, जो मनुष्य को अवेलेबल है। सवाल केवल चेतना का है। तो एक बार ऐसे ही दावानल कुंड पे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपने गौड़ीय वैष्णवों को प्रवचन दे रहे थे। बहुत देर प्रवचन दिया, प्रवचन समाप्त हो गया तो उठे, मट्टी में बैठे थे, समझो आप मट्टी में बैठे थे, उठेंगे तो क्या करेंगे, आप झटकेंगे ना अपने कपड़े को। तो गौर किशोर बाबा जी ने रोका उनको, डांटा, आप लोग मूर्ख लोग हो, उन रज कणों को झटक रहे हो, जो एक कण भी देवताओं को लाभ नहीं होता है उनका, और ये एक रज कण की प्राप्ति होने से उसमें सारा प्रेम का रहस्य राधा कृष्ण का छुपा हुआ है, वो अनायास ही आपके शरीर पर चिपका हुआ है, आपका परम भाग्य की बात है, आपको जन्म जन्मांतर के संचित से मुक्त करके प्रेम भक्ति का दान देने वाला रज कण है, ऐसे अनंत कणों को आप झटक रहे हो, ऐसे मूर्ख लोग आप, ऐसे उन्होंने बताया। क्या बता रहे गुरुदेव गौर किशोर जी महाराज, बता रहे हैं कि ये रज का कण इतना शक्तिशाली है। कहते हैं उन्होंने बताया कि सारे जितने वैकुंठ लोग हैं, आपको मालूम है कितने वैकुंठ लोग हैं, किसी को पता है, अनंत वैकुंठ लोग हैं, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है ना, आभा, प्रकाश, तेज, नीले रंग का तेज निकलता है, इसलिए आकाश हमारा नीला है। वो जो अनंत आभा भगवान के शरीर से निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति में एक शक्ति होती है सभी लोगों को धारण करने की, पकड़ के रखने की। तो ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ विराजमान है, अनंत वैकुंठ, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठों में अनंत विष्णु के स्वरूप संचालन करते हैं उनका। और एक एक वैकुंठ में लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, ऐसे भगवान की अनंत लक्ष्मियां सेवा करती, एक लक्ष्मी नहीं, अनंत लक्ष्मियां सेवा करती, वो सब ऐश्वर्य से लदी हुई है। कभी एक बार झूठ मूठ के झगड़े में जब विष्णु लक्ष्मी का झगड़ा हुआ था झूठ मूठ का, तब एक कंगन टूट गया था, वो उन्होंने भी झूठ मूठ के गुस्से से उसको फेंक दिया था, तो वो टूटे फूटे कंगन से पूरे ब्रह्मांड का इकोनॉमिक्स चल रहा है। सोचे, सोच सकते, विद द ब्रोकन बैंगल द पूरा अर्थ बजट होता है ना, पूरा बजट वो बजट पूरा वो उसमें टूटे हुए उसमें चल रहा है। और ऐसे अनंत कंगन वो लक्ष्मी पहनती है, हाथ में, पैर में, गले में, पैर सब जगह पहनती है, कमर में। तो ऐसी अनंत लक्ष्मियों से बना हुआ अनंत वैकुंठ धाम का सारा ऐश्वर्य आप लेके जाएंगे तो भी आप ब्रज के एक रज कण को खरीद नहीं सकते, ऐसा लिखा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं उसको, मैं समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। तात्पर्य इसका एक ही है कि ब्रज इतना महान है कि आप सारे वैकुंठ को, ऐश्वर्य को लेके भी आएंगे तो यहाँ के एक रजकण को आप खरीद नहीं सकते। और ऐसे अनंत रजकण यहाँ विराजमान है, क्यों? क्योंकि यही वो रज है जिसके जिसके ऊपर भगवान राधा रानी और कृष्ण के चरण कमल पड़े हैं अनंत बार। और कहीं भी वैकुंठों में भगवान ने नंगे पैर में विहार नहीं किया है, यही एक ब्रजभूमि ऐसी है जिसमें भगवान ने पादत्राण भी त्याग दिया है, राधा रानी ने भी, भगवान ने भी। इसलिए जगह जगह सब जगह पर जितने भी रज कण हैं उसके अंदर भगवान के चरण चिन्ह उनके दिव्य चिन्हों के साथ में सब विराजमान है। ये ब्रज भूमि का अलंकार है, इसलिए पृथ्वी बहुत आनंदी हो गई थी कि अभी मेरे छाती पर भगवान के दिव्य चरणांग चिन्हांकित चरण चिन्ह सब निर्माण होंगे, वो भी मेरा अलंकार होगा। और सब ग्वाल वालों ने, बैलों ने, गायों ने भी ये निर्णय लिया था कि इसको नष्ट न किया जाए, इस पर कदम न रखा जाए। कैसे किया था उनको ही पता है, लेकिन ये भी बताया गया है। तो वो ब्रजभूमि उस भाव से, उस अप्रिसिएशन में हमको जाना चाहिए, और सारी ईर्ष्या को छोड़कर, सारा द्वेष छोड़कर, सारी कंपटीशन छोड़कर केवल भगवान का, भक्तों का सेवक बनकर वहाँ पर जाना चाहिए। और उस भाव में अगर हम कुछ समय भी वहाँ पर निवास करते हैं, सही भाव में संक्षिप्त निवास भी करते हैं, तो वो निवास आपको भगवत धाम सीधे पहुँचा देगा, भगवान के चरणों में पहुँचा देगा। तो आइए हम कोशिश करें कि इस जीवन में कभी ना कभी वृंदावन जाएँ, और गए होंगे तो अगली बार जाएंगे तो अच्छी चेतना में, और अच्छी चेतना में, और श्रेष्ठ चेतना में जाएं, ताकि एक ही ऐसे ट्रिप में भगवान राधा और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें और इस जीवन को धन्य करें। श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? एनीबडी एनी क्वेश्चन? सब लोग कन्विंस है कि जाना चाहिए।
आपने बोला कि 3 करोड़।
हरे कृष्णा। देखो ये कृष्ण के विवाह की बातें बड़े अद्भुत हैं। हाँ, कृष्ण ने 5 जगह पर वृंदावन धाम के अंदर राधा रानी के साथ विवाह किया है, संकेत वन, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और भांडिर वन। ये 5 जगह पर भगवान ने कृष्ण राधा रानी के साथ में गुप्त विवाह किया है। फिर जब भगवान क्या बने, सब ग्वाल बाल बने कि नहीं? एक बार ब्रह्मा जी सबको चुरा लिया, सब बच्चों को चुरा लिया, सब ग्वाल वालों को चुरा लिया, तो भगवान क्या बने? सारे ग्वाल बाल भगवान बने, सारे बछड़े बछिया भगवान बने, और भगवान खुद भी भगवान ही थे और बाकी सब भी भगवान है। तो उस रूप में क्या हुआ, सारे गोपियों से उन्होंने विवाह कराया। तब जो कृष्ण रूप में कृष्ण थे, ग्वाल बाल के रूप में नहीं, जो कृष्ण रूप में कृष्ण थे, बाबा को बताए, बाबा अभी अच्छा स्टार्स अच्छी जगह पर है, अभी आप सब गोपियों के, सब गोपियों से विवाह कर लो, क्योंकि सभी गोपियों की कृष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा थी। अभी सभी ग्वाल बाल कृष्ण बने हुए थे, तो जितनी भी अनंत करोड़ गोपियां थी उनके साथ भगवान ने विवाह किया और एक साल पति पत्नी के रूप में ब्रज में रहे सब, जब तक ब्रह्मा जी वापस आकर ग्वाल वालों को लौटा नहीं दिया। तो ये भी विवाह ही है ना भगवान के। ये हो गया 3 करोड़ तो उधर कामेवन में है, फिर भगवान यहाँ से द्वारका गए तो फिर रुक्मिणी आदि 8 कन्याओं से शादी की, उसके बाद में 16,100 कन्याओं से वो कहाँ पर नरकासुर को वध करके उसके जो 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था उनके साथ एक साथ विवाह किया वहाँ जाकर द्वारका में जाकर। तो वो 16,000 एक साथ द्वारका लीला है, वो ऐश्वर्य भाव है। और कहते हैं कि वो जो गोपियाँ थी यहाँ की, राधा रानी जैसी गोपियाँ थी, वही गोपियाँ थोड़ा विरह को ठंडा करने के लिए रानी के रूप में वहाँ प्रकट हुई और भगवान के साथ में स्वकीय रस में उन्होंने ऐश्वर्य भाव में संग किया ऑफिशियल पत्नी बनकर। आया समझ में? ये समझ में आ भी जाता है और अचिंत्य भी है ना, समझने वाला भी है। इसके लिए इसको अस्त क्या कहते हैं उसको, हाँ अचिंत्य भेदाभेद, एक साथ में समझ में आता भी है और नहीं भी आता है। तो भगवान बहुत पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। वो हम सबके पति भी हैं, हम सब उनकी पत्नियां हैं, चाहे हम पुरुष शरीर में हो और आप स्त्री शरीर में हो, लेकिन हम सब उनकी पत्नियां हैं सही भाव में देखा जाए तो। ऑल ऑफ अस आर फीमेल्स इन रियल भाव। भगवान सबके पति हैं, सबके नाथ हैं भगवान, प्राणनाथ। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।